जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदान ब्रज जन जय यमुना तीर बन जा जय कुंज जय यमुना तीर बन जा जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज राधा कुंज जय राधा माधव जय कुंज राधा नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सश्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद की जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय समवेद भक्त बृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग दीदी हरे कृष्णा तो बहुत ही निकट रामनवमी का उत्सव आ रहा है, रामनवमी का उत्सव बहुत निकट आ रहा है, इसलिए हम राम का चरित्र सुन रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, एक चरित्र जो मैं सुनाऊंगा वो पद्म पुराण से है। सबको आवाज सुनाई पड़ रही मेरी साफ? तो ये पद्म पुराण से ये कथा है। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है और घोड़े के पीछे रक्षा, घोड़े की रक्षा में शत्रुघ्न जी हैं और बहुत बड़ी सेना है और भरत जी के पुत्र पुष्कल। कौन? पुष्कल। भरत जी के पुत्र पुष्कल हैं, शत्रुघ्न जी और पुष्कल घोड़े की रक्षा में और सेना भी है, है ना, और घोड़ा जो है हर स्थानों में जा रहा है ना। तो एक स्थान है चक्रांका नगरी, वहाँ के राजा हैं सुबाहु, राजा सुबाहु वहाँ के राजा हैं। तो वहाँ उस राज्य में जब घोड़ा गया तो उनका जो पुत्र है दमन, उसने जो है घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध हुआ। तो काफ़ी युद्ध का वर्णन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास की पूरी कथा सुनाए। तो फिर दमन और चित्रांग ये दोनों पुत्र राजा सुबाहु के दोनों पुत्र हैं। तो दमन पराजित हो गया है और अब चित्रांग उस समय जो है, अब राजा सुबाहु ने एक पूरी सेना अपनी जो है व्यूह के आकार में खड़ी कर ली है। और ये व्यूह कौन सा है? क्रौंच व्यूह, क्रौंच पक्षी के आकार में सेना को जो है खड़ा किया है। तो इसमें वर्णन हुआ है कि राजकुमार चित्रांग क्रौंच के कंठ भाग में रथ में विराजमान है, कंठ के हिस्से में, क्रौंच पक्षी का जो है कंठ में राजकुमार चित्रांग हैं। और उसने जो है शत्रुघ्न की सेना में प्रवेश किया, उसका धनुष बहुत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने खींच कर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। किसके बाणों से? चित्रांग के, है ना। और किसकी सेना के सैनिक धराशायी हो गए? शत्रुघ्न जी की सेना। इस प्रकार घोर युद्ध हो जाने पर पुष्कल भी युद्ध के लिए आए। पुष्कल भरत जी के पुत्र हैं, आए। चित्रांग और पुष्कल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय दोनों बड़े मनोहर दिखाई देते थे। पुष्कल ने एक भ्रामक अस्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र जो है बड़े आश्चर्यजनक होते हैं। भ्रामक का मतलब जानते क्या? जो घुमाने वाला। एक भ्रामक अस्त्र का प्रयोग किया और चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। वो अस्त्र छोड़ा तो जैसे ही रथ में वो अस्त्र जो है घुसा तो उसने रथ को चारों तरफ घुमाना आरंभ किया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाया। एक मुहूर्त जानते कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट तक पुष्कल के उस बाण ने जो है चित्रांग के रथ को आकाश में घुमाया, ऐसे जैसे एयरप्लेन कभी ऐसे घूमे आकाश में, ऐसे रथ को एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक घुमाया है। उसके बाद घोड़ों सहित वो रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ, युद्ध भूमि आकर के ठहर पाया, बड़ी मुश्किल से रोक पाया चित्रांग अपने रथ को, बहुत मुश्किल से रोक पाया। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कल तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया, तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रहे, किंतु अब मेरा पराक्रम देखो, जिसकी सूरवीर प्रशंसा करते हैं। चित्रांग ने कहा, ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से पुष्कल का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे पुत्र में इतना पराक्रम है। पुष्कल जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। चित्रांग के रथ को नष्ट ही कर दिया। जब रथ टूट गया तो चित्रांग दूसरे रथ में सवार हुआ, परंतु पुष्कल ने उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर दिया। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट किए। जिस रथ में वो बैठता है उसी रथ को तोड़ देते हैं। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कल के साथ युद्ध करने के लिए आए। क्रोध में भरकर 5 भल्ल हाथ में लिए और भरत पुत्र के मस्तक को निशाना बनाया। कहाँ पर? इधर। किसने? चित्रांग ने। 5 भल्ल लेकर के उन भल्लों की चोट खाकर पुष्कर को बहुत क्रोध आया और धनुष पर बाण का संधान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, पुष्कल, चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण ना ले लूं तो सती नारी को कलंकित करने से पापी को जो दोष होता है वो मुझे मिले। सती नारी को कलंकित करने से पापी को जो फल मिलता है, जो दंड मिलता है, वो दंड मुझे मिले। मेरी ये प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कल का ये वचन सुनकर बुद्धिमान चित्रांग हंस करके बोला कि हे वीर, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे मरने का दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे पथ के लिए जो बाण छोड़ोगे उसे मैं यदि ना काटूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। चित्रांग ने कहा, मैं तुम्हारे बाण को जरूर काटूंगा, मैं मर जाऊं तो कोई मुझे चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाण को अवश्य काटूंगा। अगर नहीं काटा तो जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है कि क्यों जा रहे हो तीर्थ यात्रा में, घर में रहो, अपना खाओ पियो, सो भोग करो, तीर्थ यात्रा में इतना कष्ट क्यों उठाते हो। तो कोई उत्साह नष्ट करता है, उसको जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे अगर मैं तुम्हारे अस्त्र को, तुम्हारे बाण को ना काट दूं। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गया, उसने अपने धनुष को संभाला। पुष्कर बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री राम के चरणों की उपासना की है, पुष्कर बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री राम के चरणों की उपासना की है तो मेरी बात सच्ची हो। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में विचार नहीं करता हूं, ये भी ब्रह्मचारी, उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी, अपनी स्त्री की सेवा दूसरी किसी स्त्री का मन में विचार नहीं करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य हो जाए, मतलब इस बाण के द्वारा मैं तुम्हारा वध कर दूँ। ये कहकर पुष्कर ने तुरंत अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वो बाण छोड़ता देख चित्रांग ने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण रखा और अपने वध के लिए आते हुए पुष्कल के बाण को काट दिया। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कल की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर गया। बीच से काटा ना तो पिछला हिस्सा तो धरती में गिर गया, किंतु आगे का आधा हिस्सा जिसमें नोक थी आगे बढ़ा। पुष्कल के बाण का आगे का हिस्सा आगे बढ़ा। उसने एक क्षण में चित्रांग का गला काट दिया। दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हरि बोल। राजकुमार चित्रांग का सुंदर मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा और वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यूह के भीतर प्रवेश किया। अब व्यूह के अंदर, सेना की व्यूह में पुष्कल ने प्रवेश किया। अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन देखकर राजा सुबाहु पुत्र शोक से बहुत दुखी हुए। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन, ये 3 पुत्र हैं इनके, तो चित्रांग की मृत्यु हो गई, लेकिन विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके ये वचन बोले। तो कहा अभी प्रणाम कितने आश्चर्य की लीला है और पिता के चरणों में प्रणाम करके ये वचन बोले, राजन हम लोगों के जीते जीते आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभीष्ट होती है। ये चित्रांग धन है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है, वीर गति प्राप्त की है। आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं युद्ध में मन लगाइए। तो दोनों पुत्रों का ये वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया। क्या नाम है महाराज का? सुबाहु। और युद्ध के लिए निश्चय किया। ये दोनों भाई विचित्र दमन भी असंख्य सैनिकों से भरी शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के साथ युद्ध किया। रिपुताप ये शत्रुघ्न की सेना में एक राजा है, रिपुताप के साथ। और विचित्र ने नील रत्न के साथ युद्ध किया। नील रत्न भी एक राजा है शत्रुघ्न की सेना में। ये दोनों वीर उत्साह पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा सुबाहु रथ पर सवार हो करोड़ों वीरों से घिरे शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने के लिए चले। तो राजा राजा के साथ युद्ध कर रहे हैं। सुबाहु को पुत्र वध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते देख शत्रुघ्न के रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। हनुमान जी नाखून ही उनके आयुध हैं। हनुमान जी के आयुध क्या है? नाखून, नखायुध बोलते ना, नखायुध। नाखून ही हनुमान जी के आयुध हैं और युद्ध में विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में बड़े वेग से चोट की, 10 बाण मारे। परंतु हनुमान जी भयंकर वीर, उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ में पकड़ लिए और तिल तिल करके तोड़ दिया। 10 बाण ऐसे हाथ में पकड़ करके और तिल तिल करके तोड़ दिया, ऐसे मसल दिया। ऐसे शक्ति इतनी शक्ति है ऐसे करके चूर्ण कर दिया हनुमान जी ने। मोहन बलवान थे हनुमान जी, राजा के रथ को पूंछ में लपेट लिया। राजा सुबाहु के रथ को पूंछ में लपेट लिया और खींच करके ले चले। अब चलो मेरे साथ हनुमान जी ने उन्हें रथ लेकर जाते देख सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए। रथ को छोड़ दिया, आकाश में खड़े हो गए। ये शक्तिशाली आकाश में खड़े हो गए, रथ को लेकर जाओ मैं तो मैं रथ से अलग हूँ। आकाश में खड़े हो गए और तीखे नोकों वाले बाणों से उनकी पूंछ में और उनके हनुमान जी के मुख में, हृदय में और भुजाओं में, चरणों में चोट पहुंचाने लगे। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने वेग से उछलकर राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। हनुमान जी ने राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा आकाश में खड़े थे, ये सब योग शक्ति थी ना। लेकिन जब हनुमान जी की लात लगी छाती में तो नीचे गिरे, मुंह से गरम गरम खून की उल्टी होने लगी। उस समय जोर जोर से श्वास लेते हुए कांप रहे हैं। मूर्छा अवस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अब राजा सुबाहु जो है मूर्छित अवस्था में है, उसी में स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री राम यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं। श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो वे तो सेना के पीछे नहीं जा सकते, सेना के साथ नहीं जा सकते। हाँ, वे तो युद्ध नहीं करेंगे, यज्ञ की दीक्षा ली हुई है। तो यहाँ चक्रांका नगरी में ही जो है मूर्छित राजा सुबाहु दर्शन कर रहे हैं श्री राम के। क्यों? हनुमान जी की लात लग गई। हनुमान जी की लात का प्रहार बड़ा सौभाग्य है। तो श्री राम का दर्शन हो रहा है उनको। यज्ञ मंडप के भीतर श्री राम विराजमान है। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण घेर कर बैठे हुए हैं, श्री राम को घेर कर बैठे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं और बार बार श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। श्री राम का विग्रह श्याम रंग का है, नेत्र सुंदर हैं अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। ये यज्ञ की जो है ये विधि है, हाथ में मृग श्रृंग लिए हुए हैं। नारद आदि देवर्षि हाथों से वीणा बजाते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर श्री राम की सेवा कर रहे हैं। चार वेद पुरुष रूप में श्री राम की सेवा कर रहे हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के देने वाले पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। अब होश आया, उन्हें चेत हुआ है, क्योंकि अगर श्री राम को भगवान मानते तो घोड़ा क्यों पकड़ते हैं, है ना। तो पृथ्वी में जो है घोड़ा जब जाता है और घोड़े के माथे में जो सोने का पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि श्री राम ही चक्रवर्ती सम्राट हैं, है? और जो इस बात को नहीं मानता है वो घोड़े को पकड़े, है? तो राजा सुबाहु की श्रद्धा नहीं थी श्री राम में, इसलिए तो घोड़े को पकड़ा और शत्रुघ्न की सेना के साथ युद्ध भी कर रहे हैं, हनुमान जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हनुमान जी की लात से अज्ञान दूर हो गया है। अब शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चल पड़े, अब रथ की जरूरत नहीं है, पैदल ही चले शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चले। तो धर्मज्ञ महाराज ने युद्ध के लिए उद्यत हुए सुकेतु विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका। अब मत मलो, अब मत युद्ध करो, और कहा अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो दमन, ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमारी ओर से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि श्री राम के घोड़े को हमने पकड़ा है। जो तुमने श्री राम के तेजस्वी घोड़े को पकड़ दिया है, ये श्री राम कार्य कारण से परे साक्षात परब्रह्म हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं, इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, इस प्रकार से जानना। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ज्ञान ये नहीं है, असली ब्रह्म ज्ञान ये है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूँ, मेरे निष्पाप पुत्रों पूर्व काल में अशितांग मुनि के साप से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया था। अब वो बता रहे हैं कि मैंने क्या अपराध किया जिससे एक ऋषि ने मुझे साप दिया और मैं ऐसे अज्ञान में फंसा। प्राचीन समय की बात है, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं अशितांग मुनि की सेवा में गया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी महात्मा के पास जाइए, हाँ उनको प्रणाम करिए, प्रश्न करिए, उनकी सेवा करिए। तो अशितांग मुनि के पास मैं गया। उस समय उन ब्रह्मर्षि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना प्रारंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री राम हैं उन्हीं का नाम परब्रह्म है, तथा जो उनकी धर्म पत्नी भगवती सीता हैं वे भगवान के साक्षात शक्ति हैं। दुस्तर और अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री राम की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। गरुड़ ध्वज कहा जाता ना, तो भगवान के रथ की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। ये कौन कह रहे हैं? अशितांग मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा सुबाहु से कह रहे हैं। और ये पूरी बात सुबाहु बता रहे हैं अपने पुत्रों को कि पहले क्या घटना हुई थी। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वो इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा। जो मायावादी होते हैं ना वैसे ही होते हैं, है ना, उपहास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है। अभी नहीं समझते कि हर्ष और शोक, जो सीता का जो हर्ष शोक राम के संबंध में है वो तो बहुत ऊंचे धरातल का है। हर्ष शोक जो है रजोगुणी व्यक्ति में होता है, भगवान ने गीता में कहा है, तो वो तो भौतिक हर्ष शोक है, तो मैंने मतलब ये अपराध किया, सीता जी का अपराध किया कि हर शोक में डूबी हुई सीता जी क्या चीज़ हैं, हर शोक करती, कभी हर्षित होती कभी शोक करती, है ना। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, ऐसे लोग सोचते हैं ना, तो चूंकि गहरी बातों को नहीं जानते हैं, जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा तथा जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन, फिर वो लीलाएं क्यों करेगी, अकर्ता है। मुने मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म से परे है, जिसका जन्म होता ही नहीं, मुझे उस तत्व का उपदेश दीजिए। मेरे ऐसे कहने पर उन विद्वान मुनिश्वर ने मुझे साप दे दिया, साप दिया, क्यों, तो तरीका नहीं है बात करने का, अपने शंका है वो आप इस तरह से प्रस्तुत कीजिए कि आपकी शंका का उत्तर है और मिले, हा? लेकिन यहाँ शंका नहीं प्रस्तुत की है बल्कि विरोध किया, है ना, तो ये तरीका नहीं है, ये बहस करने वाली बात होती है, तो गीता में भगवान ने बहस के लिए मना किया है, लेकिन प्रश्न की आज्ञा दी कि प्रश्न करिए, प्रश्न इस प्रकार से करिए कि आपके प्रश्न का उत्तर मिले और आपके अंदर श्रद्धा हो कि आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। शंका आपकी है और वो आपके अज्ञान के कारण है, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अज्ञान आपका ही है जो आपकी शंका हुई है, और शंका को आप दूर करने के लिए प्रार्थना की, मेरी शंका दूर कीजिए, है ना। यहाँ पर शंका उन्होंने नहीं की है बल्कि विरोध किया, है ना, तो गलत तरीका है, ज्ञान प्राप्त करने का ये गलत तरीका है, है? तो ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनि ने मुझे साप दे दिया। तो ये नहीं सोचना कि मुनि विद्वान है तो उनको क्रोध क्यों आया, उन्होंने क्रोध क्यों किया, उन्होंने साप क्यों दिया, सामान्य लोग ऐसे सोचते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, साप नहीं देना चाहिए, क्यों साप दिया, क्रोध क्यों किया, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो क्रोध करते हैं, वो साप देते हैं, उनका जो क्रोध है और जो साप है वो ज्ञान देने के लिए होता है, अज्ञान को काटने के लिए होता है। तो उन्होंने साप दिया, वे बोले अरे नीच, तू श्री राम के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है, अगर नहीं जानता है तो प्रश्न करना, प्रतिवाद क्यों करता है, यानी विरोध क्यों करता है, इन श्री राम की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य हैं ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है, इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। ये सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए, अब मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया कि मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे से गलती हो गई, दया कीजिए। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले राजन, जब तुम श्री राम के यज्ञ में विघ्न डालोगे, जब तुम श्री राम के यज्ञ में विघ्न डालोगे, विघ्न ही डालना है, घोड़े को पकड़ना, घोड़े को जाने दो, एक साल में घोड़ा जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके उसी स्थान में आता है जहाँ से चला था, और घोड़े को ही पता है, घोड़े को कोई चलाता नहीं है, घोड़े के पीछे पीछे रक्षा में सेना चलती है, लेकिन घोड़ा अपनी इच्छा से चलता है। तो मुनीश्वर ने कहा दयापूर्वक, क्या कहा, कि जब तुम श्री राम की यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण का प्रहार करेंगे उसी समय तुम्हें श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। अब तुमको जो है ज्ञान इस विधि से मिलेगा, है ना, मतलब दंड मिलना चाहिए ना। मुनि असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, वही हुआ जो होना था, है? उन्होंने साप दिया तो साप को उन्होंने वापस नहीं लिया, क्योंकि इतने तपस्वी जो ऋषि मुनि होते हैं कोई बात बोल देते हैं तो अपनी बात को फिर वो मिथ्या नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उपाय बता देते हैं, तो उपाय बता दिया। अतः अब मेरे महाबली सैनिक श्री राम के शोभायमान घोड़े को ले आए और उस घोड़े के साथ ही मैं बहुत सा धन वस्त्र और ये राज्य भी श्री राम को अर्पण करूंगा, अपना राज्य भी अर्पण करूंगा। वो यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है, उसमें श्री राम का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए घोड़े से अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा लग रहा है। केवल घोड़ा ही नहीं वापस करना है, अपना सब कुछ, अपना जीवन भी अर्पण करना है। तो राजा अश्वभाहु के पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया और महाराज अश्वभाहु को श्री राम के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन हम लोग आपके चरणों की सेवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वो शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चमर से सुशोभित रत्न और माला की शोभा से संपन्न चंदन के द्वारा चर्चित ये घोड़ा शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। पुत्रों ने कहा राजा से, आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती, मूंगे, ये सब लाखों की संख्या में है। इनके सिवा और भी जो जो वस्तुएं हैं उन सबको श्री राम की सेवा में समर्पित कीजिए। कौन कह रहे हैं? राजा अश्वभाहु के पुत्र कह रहे हैं। पुत्रों के वचन सुनकर महाराज अश्वभाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार लेकर नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच से सुसज्जित हो, घोड़े को यहाँ ले आओ, घोड़े की रक्षा में। अब जो है सब पूरी सेना घोड़े की रक्षा में जो है घोड़े को लेकर के आए, तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास जाऊंगा। तो ये कथा शेष जी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? शेष जी सुना रहे हैं। तो सोचिए कितनी सुंदर कथा है, शेष जी अपने मुख से सुना रहे हैं, है ना? तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, आप लोगों को शेष जी सुना रहे हैं, इसलिए आप सुनिए, है ना? राजा अश्वभाहु के वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु और अन्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए नगर में गए और उस घोड़े को जो सफ़ेद चमर से संयुक्त और स्वर्ण पत्र से अलंकृत था राजा के सामने ले आए। रत्नमाला से विभूषित, मन के समान वेगवान उस घोड़े को लाया गया देख राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले, घोड़े को लेकर के पैदल। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है, जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाशकार विनाश की ओर ले जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले। निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित है। शत्रुघ्न जी ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और मंत्री सुमति, उनके मंत्री हैं सुमति, तो अपने मंत्री सुमति से श्री राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं शत्रुघ्न जी। जितना समय होता है उनके पास श्री राम की कथा सुनते हैं। भय की बात उन्हें छू भी नहीं सकी, वे वीर की शोभा से संपन्न थे। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा अश्वभाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। किसने कहा? राजा अश्वभाहु ने कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री राम के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न ने देखा ये उद्भट राजा अश्वभाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले शत्रुघ्न जी। शत्रुओं का नाश करने वाले राजा अश्वभाहु ने शत्रुघ्न जी का भली भांति भोजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद स्वर में कहा, करुणा निधि, आज मैं पुत्र कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हुआ है। राजा बोले, मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसीलिए इसने इस श्रेष्ठ घोड़े को पकड़ लिया, आप इसके अनिति पूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए। जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं, जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन श्री राम को ये नहीं जानता, इसी से इसके द्वारा ये अपराध हुआ है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धशाली है, सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत है, ये सब श्री राम की सेवा में समर्पित, ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी श्री राम ही हैं, हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए, अपनी सेवा में मुझे भी लीजिए, मेरे पुत्रों को लीजिए, मेरे राज्य को लीजिए, सब कुछ। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने योग्य ना हो। श्री राम के चरण कमलों के प्रेमी हनुमान जी कहाँ हैं? पूछ रहे हैं, जिनकी लात खा करके मुझे ज्ञान हुआ है। हनुमान जी का हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं, उनकी कृपा से मैं श्री राम का दर्शन करूंगा। अभी दर्शन किया मैंने स्वप्न में, अब प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, तो वो जब कृपा करेंगे तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होंगे। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता है। साधु संग इस प्रकार से मिला, लात खाई तो अभी साधु संग है। मैं महामूढ़ था किंतु संत की कृपा से आज मेरा ब्रह्म साप से उद्धार हुआ है। अब मैं कमल के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज श्री राम का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत हिस्सा श्री राम के बिना बीत गया है। मैंने श्री राम को माना ही नहीं। राम कौन से बलशाली हैं? हम भी तो बलवान हैं, वे राजा हैं तो हम भी राजा हैं, है ना। मेरी बहुत सी आयु इसी प्रकार से बीत गई, अब थोड़ी सी आयु शेष रह गई है। इसमें मैं श्री राम का दर्शन कैसे करूंगा? मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री राम का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूल से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई। क्या नाम था मुनि पत्नी का? अहल्या। और युद्ध में जिनके मुख का दर्शन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री राम के नाम लेते हैं वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं। योगी लोग केवल चिंतन ही करते हैं, जा नहीं पाते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर के कोई पापी भी जो है उनके धाम में जा सकता है। अयोध्या के लोग धन्य हैं जो अपने नेत्रों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का सौंदर्य प्राप्त करते हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, राजन आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आप ए राजा, आपका सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। शत्रुघ्न जी ने, उन्होंने सबको समर्पित कर दिया, अब उनकी आज्ञा से वो प्राप्त कर रहे हैं। राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए, क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। शत्रुघ्न जी ने क्या कहा कि नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं हुआ, क्षत्रियों का ऐसा कर्तव्य ही होता है। तो ये भी ठीक है, अगर घोड़े को ना पकड़ो और घोड़े को प्रणाम करो, श्री राम को प्रणाम करो, तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर घोड़े को पकड़ दिया तो ये भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार ठीक है। संपूर्ण राज्य और ये धन सब मेरी आज्ञा से ले लीजिए, अब मैं दे रहा हूँ, अब मेरा दिया हुआ लीजिए। जिस प्रकार श्री राम मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय हैं। शत्रुघ्न जी जो है राजा को ऐसा कह रहे हैं, इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। राजकुमार दमन को आप राज्य सौंपिए और आप मेरे साथ घोड़े की रक्षा में चलिए। जब घोड़ा जाएगा, श्री राम का दर्शन करेगा, तो आप भी दर्शन करेंगे, हम सब साथ साथ श्री राम के दर्शन करेंगे। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तब वे महारथियों से घिरकर युद्ध भूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वो शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी राजा तत्व ज्ञानी थे। अतः श्री राम का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि शोक करना चाहिए, शोक करने की भी विधि होती है। तो शोक किया उन्होंने, जितना करना चाहिए उतना किया। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अशोच्यान अनुशोचस्तम, शोच्यान अनुशोचस्तम, अनु शोक करते हो तुम, अनुशोक का मतलब बार बार शोक करते हो, है ना, और अपने कर्तव्य को तुम जो है छोड़ रहे हो, है ना, तो शोक करना भी एक कर्तव्य है। शोक करने के समय शोक करना उचित है, लेकिन शोक आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से कम भी नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक भी नहीं करना चाहिए। शोक करने की जितनी आवश्यकता उतना शोक करना चाहिए। तो राजा ने शोक किया, तो यहाँ पर बताया गया है कि साधारण लोगों की दृष्टि में तो शोक, क्योंकि लोक आचार, लोकाचार शोक भी जो है करना एक समाज का जो है एक कर्तव्य होता है, तो शोक किया, लेकिन वे तत्व ज्ञानी थे। अब राजा को तत्व ज्ञान हो गया, है ना, अतः श्री राम का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ में बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देखकर घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहाँ से छूटने पर वो भाल पत्र से चिन्हित घोड़ा भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया। ये वामावर्त परिक्रमा है, भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा कर रहा है घोड़ा है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त परिक्रमा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह, है ना। तो किस प्रकार से पूर्व दिशा के अनेक देशों में गया और उन सभी देशों में बड़े बड़े सूरवीरों द्वारा पूजित राजा उस घोड़े को प्रणाम करते थे। जो भी देखते थे, कोई भी उसे पकड़ता नहीं था, कोई विचित्र विचित्र वस्त्र भेंट के लिए देते थे घोड़े को देख करके, आ श्री राम का घोड़ा है, लाओ लाओ, क्या क्या देना है दो ना। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान राज्य भेंट करते थे, ये हमारा राज्य भी समर्पित है, भेंट करते थे। कोई धन वैभव और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर घोड़े से शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते थे। तो ये कथा जो मैं सुनाना चाहता था कि मैंने सुनाई, तो आज के राम कथा में हमने ये जो है बड़ी सुंदर कथा सुनाई आप लोगों को, और शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, आपने सुनी है। जिनने सुनी है तो उनके लिए भी नया रस है, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए भी इसमें रस है, और जितने बार सुने उतना ही रस है, ठीक है ना। ये कथा जो है समाचार पत्र की तरह नहीं कि एक बार पढ़ा और फेंक दिया, ऐसा नहीं है, है ना। तो कृष्ण की जो कथा है तो ये जो है ऐसी होती है कि जितने बार आप पढ़ते हैं सुनते हैं उतना ही इसमें रस मिलता है। जैसे चंदन को जितना आप रगड़ते हैं घिसते हैं उतनी उसकी सुगंध और निकलती है, उसी प्रकार से कथा में जितना आप जितने बार आप बार बार सुनते हैं बार बार सुनाते हैं उसमें नया नया रस मिलता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, ये जो है एक शिष्टाचार कहलाता है शोक करना। इनका प्रश्न है कि शोक की विधि मतलब क्या है, हमें कितना शोक करना है, कहाँ पर शोक करना है, तो ये शिष्टाचार है। शोक करना एक शिष्टाचार है। जैसे कि जब कृष्ण को समाचार मिला, कृष्ण मथुरा में हैं और उनको समाचार मिला कि 5 पांडव और माता कुंती लाक्षा गृह में जल के मर गए। भगवान कृष्ण को पता है, भगवान कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, तो उनको पता है कि 5 पांडव और कुंती देवी सुरक्षित हैं, लेकिन शोक मनाने के लिए गए हस्तिनापुर। और ये दुर्योधन जिसने इनको जलाया था ना, तो ये गुप्त मंत्रणा के द्वारा आग लगवाई थी और वो इनको मतलब जलाने के लिए, मार डालने के लिए उसने ये भवन भी बनवाया था। वो भी शोक कर रहा है दिखाने के लिए, वो भी शोक कर रहा है। देखा धृतराष्ट्र भी है ना, ये भी शोक कर रहे हैं। इनको पता है अच्छा है, ये तो अच्छा हुआ हमारा कांटा निकल गया, राज्य का जो है कांटा निकल गया। तो पांचों पांडव और कुंती देवी चले गए इस संसार से, अच्छा हुआ हमारे राज्य का कंटक दूर हो गया, वो भी शोक कर रहे हैं। और कृष्ण बलदेव हो गए, वो भी शोक कर रहे हैं। तो शोक ना कृष्ण बलदेव को है और ना धृतराष्ट्र को है ना दुर्योधन को है। अंदर अंदर सब लोग खुश हैं। लेकिन शोक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं शोक करने का। तो कृष्ण बलदेव भी शोक करने का दिखावा कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है ना। तो शोक करने से आपका जो है उस मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है, सम्मान की भावना। तो इस तरह से हमें शोक करना होता है। शोक सभा भी होती है ना, शोक सभा, हम लोग शोक सभा करते हैं। और वैष्णवों के लिए, वैष्णवों के तिरो भाव में हम लोग शोक और हर्ष दोनों मनाते हैं। वैष्णव हैं उनके लिए हम शोक और हर्ष दोनों मनाते हैं। शोक की हमारे अब संगति में नहीं रहे इसलिए शोक है, और हर्ष इस बात का है कि भगवान की संगति में गए। तो हर्ष और शोक ये दोनों ये होते हैं वैष्णव की तिरुभाव में। तो इस तरह की विधि होती है कि हम लोग हर्ष और शोक दोनों मनाते हैं। हर्ष भी प्रकट करना होता है कभी, तो जब हर्ष प्रकट करने का अवसर होता है, आप हर्ष प्रकट नहीं करते हैं तो वो भी अपराध है, वैष्णव अपराध। छह प्रकार के वैष्णव अपराध में एक ये भी है, हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रोधते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानिषट। तो हर्ष नहीं होता है, उसके गुणों को सुन करके आपको हर्ष नहीं होता है, तो ये भी अपराध है छह प्रकार के, है ना। तो हर्ष भी जो है उचित मात्रा में हमें करना होता है, और शोक भी हमें उचित मात्रा में करना होता है, ठीक है ना। लेकिन हर्ष शोक से जो है जो भक्त हैं वो ऊपर होते हैं, इसलिए हर्ष शोक उनके नियंत्रण में होता है। उन्हें कितना हर्षित होना है वो उनके नियंत्रण में है, कितना शोक करना है वो भी उनके नियंत्रण में है। तो सब कुछ उनके नियंत्रण में होता है, लेकिन हर्ष से नियंत्रित नहीं होते हैं वो, शोक से नियंत्रित नहीं होते हैं। तो रजोगुण में व्यक्ति हर्ष शोकान्विता करता राजसा पर, रजोगुण में व्यक्ति जो है हर्ष शोक से भरा रहता है, तो हर्ष को वो रोक नहीं पाता है। जब हर्ष होता है तो उसको रोक नहीं पाता है, शोक होता है तो उसको रोक नहीं पाता है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं जो गुणों से अतीत होते हैं, तो वे जो है हर्ष और शोक को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उनका नियंत्रण होता है। काम क्रोध लोभ ये सब चीज़ों पर उनका नियंत्रण होता है, ठीक है। अच्छा आप बाद में पहले पहले हैं, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है नहीं इनकी आवाज थोड़ा और जोर से बोलो, या हैंड माइक नहीं है, हैंड माइक तो है पहले से। कृपण, उसको कृपण बोलते हैं, हैंड माइक लेकर के रखा हुआ है। हाँ जी, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो एक विशेष ही घोड़ा होता है। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो कोई साधारण घोड़ा नहीं कि कोई भी घोड़ा मिल गया तो उसको जो है आपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बना लिया, ऐसा नहीं है। इसका श्यामकर्ण घोड़ा, इसको श्यामकर्ण घोड़ा भी बोलते हैं। श्यामकर्ण कि दोनों कान जो है श्याम रंग के हों और पूरा शरीर चंद्रमा के समान बिल्कुल उज्ज्वल हो, है ना। और फिर कुछ ब्राह्मण लोग मंत्र वगैरह सब पढ़ते हैं, घोड़े की पूजा करते हैं, हैं? तो जो भी हो मतलब घोड़े में ये सब इतनी ज्ञान शक्ति आ जाती है कि वो इस तरह से चलता है, ठीक है ना। और ये जो मायावाद है ये शंकराचार्य ने प्रारंभ किया है। तो जो मायावाद का सिद्धांत है तो ये कलयुग में ये फैलता है और भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य ने ही फैलाया मायावाद। तो भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा कलयुग में ऐसे लोगों को जो है अवसर देने के लिए पाखंड फैलाएं, तो कुछ लोग हैं जो पाखंड फैलाते हैं। और प्रभुपाद ही कहा करते थे कि आप अपने को धोखा देना चाहते हो तो आपको एक धोखेबाज मिल जाएगा, और आप अपने को अगर सही रास्ते में चलाना चाहते हो तो आपको एक सच्चा साधु तो भगवान मिला देते हैं। तो इस तरह से मिला देते हैं, तो वे जो है हर बात को फिर जो है इसी तरह से करते हैं, उसको चेंज करते हैं, अपनी व्याख्या इस तरह से करते हैं भाई उनको यही समझ में आए। तो कोई व्यक्ति अगर अपने को धोखा देना चाहता है तो उसको एक धोखेबाज मिल जाता है। तो इसलिए मायावादी संप्रदाय भी कलयुग में चल रहा है और खूब फूल फल रहा है, ठीक है ना। तो कलयुग में दोनों चीज़ हैं, पाखंड भी फैल रहा है और श्री चैतन्य का संप्रदाय भी फैल रहा है ना। तो दोनों रहेंगे और जिनको जो है जो चाहिए उनको वही मिलता है, ठीक है ना। और आपका आपने हाथ उठाया था जी,
हरे कृष्ण, आपकी कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर के दिल में एक संशय है कि जितने भी अश्वमेध यज्ञ हुए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी, तो उस यज्ञ का क्या फायदा है उन लोगों को प्राणों की बलि देने से। दूसरे
देखिए, क्षत्रियों का ये स्वधर्म है, और स्वधर्मे ने धनम श्रेया, गीता में भगवान क्या कहते हैं, स्वधर्मे ने धनम श्रेया, स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है, परधर्मो भयावह। क्षत्रिय जो है युद्ध में अगर मरता है तो उसको वीर गति की प्राप्ति होती है, और अगर उसकी भौतिक आसक्ति नहीं है तो वैकुंठ में चला जाएगा, और भौतिक आसक्ति है तो स्वर्ग की प्राप्ति कम से कम है ही है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते योद्धम इंद्रसम, भगवान अर्जुन से कहते हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये युद्ध जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये यदृच्छा यानी अनायास ही प्राप्त हो गया है, और ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। सुखना क्षत्रिया भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से मही, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए कौन्तेय युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, है ना। तो ये चार वर्ण जो भगवान ने बनाए हैं तो ये गुण कर्म भाग से गुण कर्म के अनुसार बनाए हैं, और भगवान ही कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण का कर्म भयानक है, वो विष की तरह है, और ब्राह्मण कर्म बड़ा अच्छा है भाई, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो ब्राह्मण बड़ा अच्छा कार्य है, लेकिन वो ब्राह्मण के लिए अच्छा है, क्षत्रिय के लिए वो कार्य भयानक है। क्षत्रिय के लिए अपना स्वधर्म विगुण है, बड़ा भयानक है, भाई भाई की हत्या कर देता है, पिता पुत्र की हत्या कर देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है। लेकिन युद्धे चापे पलायनम, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध से नहीं भागना। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत गहरी हैं। हम लोग देहात बुद्धि में पढ़ करके सोचते हैं कि भाई ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, लेकिन मृत्यु तो जो है एक वस्त्र बदलने की तरह है। भगवान कहते हैं है ना, वासान से जीर्णान यथा विहाय, है ना। और इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको क्या गति मिलने वाली है उस पर विचार करिए, तो वो जो है हर्ष की बात होती है। शरीर छोड़ करके अगर आप नरक जा रहे हैं तो ये शोक की बात, और शरीर छोड़ के बाद आप जो है अगर स्वर्ग जा रहे हैं या वैकुंठ जा रहे हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो शरीर छोड़ना ये तो एक साधारण बात है, ये मृत्यु तो एक साधारण बात है, ये इतनी सामान्य है जैसे आप रोज़ वस्त्र बदलते हैं, तो इसकी आप चर्चा भी नहीं करते क्या कि आपने वस्त्र बदले, कोई बहुत बड़ा ये जो है कार्य नहीं हुआ है कि कोई बताए कि आज मैंने वस्त्र बदले। आप तो रोज़ वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से शरीर बदलते हैं, जीवात्मा शरीर बदलते हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं है कि हम इसको कहें बहुत बड़ी दुर्घटना, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। तो अज्ञान में हम लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु बहुत बड़ी दुर्घटना है, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। तो आज की जो शिक्षा है ये बहुत बड़े अज्ञान में है। जो प्रभुपाद निंदा करते हैं कि वो बिल्कुल पशु बनाती है, आज की शिक्षा आपको बिल्कुल पशु बनाती है, कि पशु भी नहीं जानता है मरने के बाद कोई अगला जीवन है, आप भी नहीं जानते हैं। तो आज की जो शिक्षा है आपको शिक्षित पशु बनाती है, बस इतना ही लाभ है कि आप शिक्षित पशु बन गए हैं। वो चार पैर के पशु हैं, आप दो पैर के पशु हैं, और उसके जो है सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, नहीं आपके आपके सींग नहीं है, पूंछ नहीं, उसके सींग है और पूंछ है, हैं। तो बस बाकी जो है आज की शिक्षा का कुछ लाभ नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन को नष्ट करके पशु का जीवन देती है आज की शिक्षा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कसाई घर के समान है, कसाई घर में जो पशु जाता है तो उसका जो जीवन नष्ट हो जाता है, है? और ये जो कसाई घर हैं आजकल के जो डिग्री कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी हैं, इनमें मनुष्य जाता है और पशु बन करके निकलता है। ये कसाई घर ऐसे हैं, मनुष्य के जीवन की हत्या करके और पशु का जीवन देके निकालते हैं। दो पैर के आप कोट पैंट टाई पहन करके आप निकले, पशु बन करके निकले, तो ये कसाई घर है, ठीक है ना। और कोई, हाँ जी, पश्चाताप का मतलब होता है कि आपने कोई जो है निंदनीय कार्य किया है उसके लिए आप जो है शोक करते हैं, तो ये पश्चाताप कहलाता है कि आपने कोई गलती की है तो आप उसके लिए आपको ताप होता है। पश्चात का मतलब बाद में और ताप का मतलब है शोक या दुख, तो पश्चाताप उसको कहते हैं। तो ये पश्चाताप जो है ये बहुत बड़ा गुण है कि आप पश्चाताप करते हैं किसी गलती को करके, लेकिन आजकल जो है इसको दोष माना जाता है, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तो पश्चाताप मत करो, जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। और गीता सार के नाम पर ये अज्ञान फैलाया जा रहा है ना। भक्त लोग हमेशा पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन पूरा चला गया, हमने कृष्ण का भजन नहीं किया, है ना, तो उनको इस बात का शोक होता है। तो ये जो है ये गुण कहलाता है, ठीक है ना। और पश्चाताप की अग्नि में अपने वो जो दोष हैं वो दूर किए जाते हैं, तो ये पश्चाताप इस बात का जो है मतलब होना चाहिए कि हमने जो है किसी भक्त के साथ अगर अनुचित व्यवहार किया है तो उसका पश्चाताप होना चाहिए, है ना। जो हमें व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार किया, तो पश्चाताप होना चाहिए। तो ये पश्चाताप एक गुण कहलाता है। हाँ जी,
इसी अग्नि को जो है प्रज्वलित कैसे कर सकते हैं,
ये जो है दैवी संपत्ति है। भगवान ने 26 प्रकार के जो दैवी गुण बतलाए हैं तो उसमें बताया है एक ये भी गुण है हरी हरी बोलते हैं, शास्त्र के विरुद्ध अगर हम कुछ करते हैं तो हमें लज्जा होना चाहिए, तो हमें जो है शर्म आनी चाहिए, हमने कोई ऐसा काम किया तो हमें शर्म आना चाहिए या पश्चाताप होना चाहिए, तो ये गुण कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो सब गुण आते हैं हमारे अंदर, सतोगुण में सब गुण आते हैं, है ना। रजोगुण तमोगुण से हम ऊपर उठते हैं सतोगुण में, तो सतोगुण के भाव हैं ये सब, तो हमें सतोगुण का विकास करना है, शुद्धिकरण, ठीक है। धन्यवाद। एक प्रश्न, चलो एक प्रश्न आखिर, हाँ श्याम वर्ण जो है ये भी अनेक प्रकार का होता है। तो राम का जो श्याम वर्ण है वो कैसा है, रामम दूर्वा दल श्यामम, दूर्वा दल के समान श्याम। दूर्वा देखिए आपने पार्क में दूबा, दूर्वा घास तो कैसे होती है, हरी होती है, तो श्याम वर्ण है, लेकिन कैसा श्याम वर्ण है, दूर्वा दल श्यामम। कृष्ण का श्याम वर्ण है कैसा है, मेघ श्याम, बादल का जो है सजल बादल, जो वर्षा के बादल हैं उनकी तरह श्याम। तो श्याम रंग जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश गौर नेताय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय।